आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ एक, जो कि है सूरदास के कुछ पद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सूरदास के ये पद पढ़ने से पहले हम पहले सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 यानी 1478 में। और इनके जन्म को लेके अलग अलग मत हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मथुरा के निकट एक रेणुका क्षेत्र है, वहां इनका जन्म हुआ। तो दूसरी मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि दिल्ली के पास एक जगह सी ही, वहां इनका जन्म हुआ। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 8 मुख्य शिष्य माने गए हैं। तो ये जो 8 मुख्य शिष्य माने गए हैं, इन्हीं को अष्टछाप कवि कहा जाता है। और वल्लभाचार्य के इन 8 शिष्यों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सूरदास जी। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट एक जगह है, वहां पे श्रीनाथ जी कृष्ण जी का एक मंदिर था, जहां पे ये भजन कीर्तन गाते थे, लिखते थे, सारी चीजें करते थे। और फिर इनका निधन 1583 यानी 1583 में पारसौली में हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरवात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो इनके मुख्य ग्रंथ कौन से बताए गए हैं स्टूडेंट्स? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ठीक है, ये 3 ग्रंथ इनके मुख्य माने गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा हुआ? सूरसागर। इन्होंने अपनी कविताओं में क्या दिखाया है? जो हमारा भारतीय समाज का आंतरिक चित्र है कि कैसे हम लोग खेती और पशुपालन करके हमारा ये समाज आगे बढ़ता है ना। और यहाँ की जो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जो उनका स्वभाव है मनुष्य का, प्रेम करना, लड़ना, घृणा करना, प्यार करना, ये सारी चीजें उनकी कविताओं में, रचनाओं में दिखता है। इनको वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। श्रृंगार रस यानी जिसमें प्रेम की अनुभूति हो, और वात्सल्य यानी जब किसी के बाल रूप, बचपन के रूप से प्रेम की अनुभूति हो। इन्होंने कृष्ण का, गोपियों का, राधा कृष्ण का ऐसा प्रेम व्यक्त किया है कि जो मानव प्रेम है उसके लिए भी एक आदर्श स्थापित होता है ना, कि प्रेम असल में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें पैदा करता है। इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, यानी जो लिखते हैं वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। और जो लोकगीत गाए जाते थे ब्रज के इलाके में, उसी का और परिनिष्ठित और शुद्ध रूप है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उनके बारे में अब आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं, देखिए। ठीक है, क्या है? उनकी एक रचना है भ्रमर गीत। ठीक है, आप पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं। पेज नंबर 4 पे दिया गया है, यहाँ पे, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसी बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाना सूरदास की लोकधर्मता को दर्शाता है। सूरदास जी की रचना है सूरसागर, उसका भ्रमर गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ उसके चार पद आपको दिए गए हैं। इसमें उस प्रसंग का वर्णन है जब कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां उनकी विदाई में विरह में तड़पती थी, तो उन्होंने उद्धव को भेजा क्योंकि उद्धव को प्रेम से ज्यादा ज्ञान और उपदेश में विश्वास था। तो गोपियों के पास जब उद्धव जाते हैं तो वो उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं और अलग अलग तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन गोपियों को ज्ञान से ज्यादा प्रेम पसंद होता है, तो वो उन्हें जो संदेश दे रहे, जो उपदेश दे रहे होते हैं गोपियों को पसंद नहीं आता। जब वहां एक भौरा आता है तो वो भौरों पर व्यंग मारती हैं, लेकिन वो होते व्यंग किस पे है, असल पे उद्धव पे। तो इसी परंपरा को भ्रमर गीत का नाम दिया गया। तो यहाँ जो अलग अलग पद दिए गए हैं उसमें किसी पहले में जैसे बताया गया है कि गोपियां शिकायत करती हैं उद्धव से कि तुमने कभी स्नेह को प्रेम को महसूस ही नहीं किया, तो तुम ये जो विरह की जुदाई की जो दुख है जो तड़प है वो तुम महसूस ही नहीं कर सकते, है ना। दूसरे पद में वो स्वीकार करती हैं कि जो उनकी मन की अभिलाषाएं हैं जो इच्छाएं हैं वो उनके मन में ही हैं। तीसरे पद में वो जो उद्धव की योग साधना है जो ज्ञान की बात वो बता रहे हैं उसे वो कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं और क्या कहती हैं कि हम तो सिर्फ प्रेम में ही विश्वास रखते हैं। चौथे पद में वो उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है ना, इसीलिए वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहलवा रहे हैं। लेकिन गोपियां आखिर में उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित क्या होता है, जनता का हित चाहना चाहिए, ये सब चीजें जब याद दिलाती हैं तो यहाँ पे सूरदास की लोकधर्मिता का पता लगता है, यानी कि सूरदास लोक धर्म को कितनी भली भांति समझते थे, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 5 पर। यहाँ पहला पद है और इसी के नीचे आप चित्र भी देख सकते हैं, बहुत सारी गोपियां हैं और उद्धव उन्हें पहुंचे हैं समझाने के लिए, है ना। तो पढ़ती हूँ पहले, फिर आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तहगे नाहिन मन अरुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो व्यंग से कहती हैं उद्धव को कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, है ना, बहुत बड़भागी। पहली लाइन देखी, तुम हो अति बड़भागी यानी तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास तो रहते हो पर फिर भी तुम्हें उनका प्रेम और स्नेह नहीं मिला। यानी ये व्यंग है कि तुम तो बड़े भाग्य, उल्टी बात होती है ना व्यंग में हमेशा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रह के भी तुम्हें उनका प्रेम नहीं मिलता, तुम तो फिर उस पत्ते की तरह हो, कमल के पत्ते की तरह। वो अलग अलग देखिए उदाहरण दे रही है, तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल में तो रहता है लेकिन जल का स्पर्श नहीं कर पाता, जल में डूब नहीं पाता, है ना। पूरा इन पात यानी जल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है लेकिन उसकी जो देह उसका जो शरीर है वो पानी से नहीं भीग पाता। दूसरी पंक्ति में उदाहरण देती है ये, तेल की कगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, है ना। उसी तरह जैसे तेल पे पानी नहीं ठहरता, तुम भी उसी तरह हो, तुम कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण का जो प्यार है वो तुम पर नहीं आ पाया है। अब तीसरी बात वो क्या कहती हैं, देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी प्रीति यानी प्रेम और नदी तो आपको पता ही है, तो जो प्यार की जो नदी है, प्रेम की जो नदी है, उसमें तुमने कभी अपने पैर ही नहीं डुबोए हैं, है ना। तुम बहुत विद्वान हो, होशियार हो, समझदार हो, इसीलिए शायद तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रंग पाए, लेकिन हम तो भोली वाली गोपियां हैं ना, हम तो उनके प्रेम को ही सब कुछ समझते हैं, हम इस तरह आकर्षित होते हैं उनसे जैसे चींटियां गुड़ पर हो जाती हैं, है ना। ये देखिए जो उन्होंने लिखा है, आखिरी पंक्ति, गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ पे चींटियां आकर्षित रहती हैं, हम भी वैसे ही कृष्ण में आकर्षित रहते हैं, उनके प्रेम को ही सब कुछ समझते हैं और हमें तुम्हारे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तुमको, यानी यहाँ पे वो क्या कह रही है, तुम्हें उनका कभी प्रेम महसूस ही नहीं हुआ, तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली, यानी उल्टी बात है, तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। तुम उनके पास रह के भी उनके प्रेम को नहीं पा पाए, लेकिन हम दूर रह के भी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम में ही खोई रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 6 पे दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितै ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरै क्यों, मर जादा न लही। इसमें गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से, कि हमारी जो मन की बात है वो तो मन में ही रह गई, वो हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन हम ना कह पाए और ना कह पाएंगी। और दूसरी बात वो क्या कहती हैं, हम चाहते तो हैं कि कृष्ण तक हमारा संदेश पहुंच जाए, हमारी बात पहुंच जाए, लेकिन हम तुमको उस लायक नहीं समझते, हम तुमको इतना उचित इंसान नहीं समझते कि तुम हमारी बातें उन तक पहुंचा पाओ। हमको तो अपनी बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है और किसी को हम संदेशा नहीं दे सकते। फिर वो कहती है कि बहुत लंबे समय से हम इस आशा में जी रहे थे कि कृष्ण जो हैं वो लौट कर आएंगे, हमारे जो तन मन की व्यथा थी, यानी जो शरीर का मन का जो कष्ट हो रहा था, जो दर्द था, वो हम सब सहते जा रहे थे बस यही सोच के कि एक न एक दिन कृष्ण लौट आएंगे और जब वो लौट आएंगे तो हमारा ये सारा दर्द, सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने तो हमारे लिए ये ज्ञान का संदेश भेज दिया है, इससे हम अब और भी दुखी हो गए, हम इस विरह की आग में, इस जुदाई की आग में अब जलने लगे हैं। हर कोई जब दुखी होता है तो वो अपने रक्षक को याद करता है ना, कोई भी इंसान जब दुखी होता है तो अपने रक्षक को याद करता है, लेकिन हमारे तो जो रक्षक हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, वो ही हमारे दुख का कारण बन गए हैं, तो अब हम किसको याद करें। फिर वो कहती हैं आखिरी पंक्ति में, आप देखिए, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा ना लही, यानी हे उद्धव, अब हम धीरज कैसे रख लें, धैर्य कैसे धारण कर लें, जो हमारे उम्मीद की एकमात्र किरण थी, आशा का एक तिनका बचा था, अब तो वो भी नहीं बचा। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन कृष्ण ने तो हमारे साथ छल कर दिया, उन्होंने धोखा किया है, उन्होंने इस प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया, उन्होंने प्रेम के बदले प्रेम ना देके एक ज्ञान का झूठा संदेशा हमें भिजवा दिया। अब तो हम और भी दुखी हो गए हैं, कृष्ण ने हमें और दुखी कर दिया है। ठीक है, दो पद हो गए आपके, अब तीसरे में देखते हैं क्या है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी, सुतो ब्याद हम ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। तीसरा देखिए, ये बहुत ही प्यारा पद है, इसमें गोपियां क्या कह रही हैं कि कृष्ण जो हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। ठीक है, देखिए, हारिल की लकड़ी, हरि यानी हमारो हरि, यानी हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे हारिल की लकड़ी क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एक पक्षी होता है कबूतर की तरह, ठीक है, उस पीले रंग वाला, और इसकी जो लकड़ी है यानी उसके पैरों को कहा जाता है, ये एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके पैरों को हारिल की लकड़ी कहा जाता है, कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल का जो पक्षी है वो लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसके लिए बस एक लकड़ी का टुकड़ा ही सब कुछ होता है। उसी प्रकार हम कृष्ण को अपना सहारा मानते हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, जीने का आधार वही, हमारा सहारा वही है, कृष्ण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने मन से, कर्म से, वचन से, हर तरीके से नंद बाबा के जो पुरुत हैं कृष्ण कन्हैया, उन्हीं को बस अपना माना है। आगे गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, रात में, है ना, ये देखिए ये वाली लाइन, दूसरी जो लाइन है, जागत सोवत स्वप्न, यानी जागते हुए सोते हुए स्वप्न देखते हैं, दिवस निसी, दिवस यानी दिन, निसी यानी रात, ठीक है। तो सोते जागते रात दिन हम बस यही स्वप्न देखते हैं कि कृष्ण हमें मिल जाएं, हमारा रोम रोम बस कृष्ण को पुकारता है, दिन भर हम बस कृष्ण का नाम ही जपते रहते हैं। आगे वो कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककड़ी, करऊ यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी, जो खाने की चीज होती है ना, खीरा और ककड़ी जैसी, वो कि तुम्हारा ये जो संदेश, ये जो उपदेश तो हमें दे रहे हो ना, ये तो हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमें तो अब कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, कृष्ण के प्यार की बीमारी लग चुकी है, अब ये आपके कहने पर हम ये योग का, ये ज्ञान का रोग अब नहीं लगा सकते। जो प्यार का रोग लगना था वो तो लग गया, लेकिन अब ये ज्ञान का रोग भी लगा के हम अपने आप को और कष्ट नहीं दे सकते हैं। हमने तो आपके जो योग के बारे में, जो ज्ञान के बारे में आप बता रहे हैं, इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, ना कभी देखा, ना इसको भोगा ही है। तो जो आप संदेश हमारे लिए लाए हैं, जो ज्ञान की बातें आप हमारे लिए लाए हैं ना, ये आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दें जिनका मन चंचल हो, है ना। देखिए आखिर में आपको समझ में आएगा, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी, ये तुम उनको ले जाके सौंप दो, उनको दे दो जिनका मन चकरी की तरह हो, यानी इधर उधर घूमने वाला। चकरी कैसी होती है, यहाँ वहां घूमती है ना, वैसे ही जिनका मन भटकता रहता हो, घूमता रहता हो, चकरी की तरह चंचल हो, उन्हें ये अपना ज्ञान ले जाके सौंपो। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो एक ही जगह लगा हुआ है, कहाँ पे, श्री कृष्ण में। तो जब हम एक ही जगह पे हैं तो हमें ज्ञान उपदेश की क्या जरूरत है, है ना। अब चलिए चौथा पद देखिए, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाए सताए। ठीक है, तो पहली पंक्ति देखिए, हरि है राजनीति, है हरि यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, हरि कहते हैं ना भगवान विष्णु को, कृष्ण को, तो हरि है राजनीति पढ़ाए, अब तो वो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, गोपियां जो हैं उद्धव से कह रही हैं, तो अब तो कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। और वो व्यंग से फिर क्या कहती हैं, देखिए, राजनीति पढ़ ली है इसीलिए उन्होंने मधुकर को ये सारे समाचार बता रही हैं, व्यंग कर रही हैं, भ्रमर को कह रही हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, गुरु जी ने उन्हें नई नई किताबें पढ़ा दी हैं, है ना। तो यहाँ क्या कह रही है, पहले ही बड़े चालाक थे लेकिन अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, ज्ञान और भी बढ़ गया है, इसीलिए वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी, हमारे प्रेम को समझते हुए अब क्या कर रहे हैं, उद्धव से हमें योग का, ज्ञान का संदेश भिजवा रहे हैं। बताओ कितने ज्यादा चालाक हो गए हैं। फिर गोपियां क्या कहती हैं कि आप मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा, आप उनसे जाके कहिए, मतलब उद्धव से कह रही कि कृष्ण जी से ये बात कहिए कि जब कृष्ण मथुरा गए थे तो वो हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, और अब हमें अपना मन वापस चाहिए, हमारा मन वापस कर दें। वो हमारा मन चुरा के साथ में क्यों ले गए, जब उन्हें मथुरा ही जाना था तो यहाँ हमें तड़पता हुआ छोड़ गए, हमें दुखी छोड़ गए और हमारा मन चुरा के ले गए, वो हमारा मन वो वापस कर दें। वो अत्याचारियों को, जो लोगों पे बुरा बुरा करते हैं उनको दंड देने, उनको सजा देने वो मथुरा गए थे, लेकिन वो तो स्वयं भी अत्याचारी हो गए हैं, है ना, तो मतलब वो खुद भी अत्याचार करते हैं, तो आप उनको हमारा ये संदेशा भी दीजिए कि राजा को हमेशा ही प्रजा के हित का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए लोक धर्म नीति समझा दी है सूरदास जी ने, एक संदेश दे दिया है, लोक धर्म नीति समझा दी है कि राजा को चाहिए कि वो कभी भी अपने प्रजा को, अपनी जनता को ना सताए। राज धर्म तो यह सूर, यह राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताया जाए, हमेशा उनके हित के बात की जाए। अगर प्रजा को कष्ट पहुंचा तो ये राजा अत्याचारी कहलाता है, है ना। इसीलिए राजा को कभी भी अपनी प्रजा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सूरदास के चार पद थे वो पढ़ लिए। अब इसके प्रश्नोत्तर बचे हैं, शब्द संपदा बची है, यानी कि कठिन शब्दों के सरल अर्थ। तो प्रश्नोत्तर हम अगले ऑडियो में करेंगे। आज मैं आपको ये जो शब्द संपदा है, पेज नंबर 8 पर देखिए, ये पढ़ा देती हूँ। ठीक है, बड़भागी यानी भाग्यवान, भाग्यशाली, जो शुरू में कहा है ना गोपियों ने उद्धव से कि तुम तो बड़े बड़भागी हो, यानी बड़े भाग्यवान हो वो। अपरस यानी अलिप्त, नीरस या अछूता, जो किसी भी रस में या किसी चीज में डूबे ना। तगा यानी धागा या बंधन। पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, पुरैन यानी कमल, पात यानी पत्ता, कमल का पत्ता। दागी यानी दाग या धब्बा। महा यानी में। प्रीति नदी यानी प्रेम की या प्यार की नदी। पाँव यानी पैर। बोर्यो यानी डुबोया। परागी मुग्ध होना। गुड़ चाटी जो पागी, यानी जिस प्रकार गुड़ में चीटी लिपटी रहती है, गुड़ से प्रेम करती रहती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये गोपियां कह रही हैं कि जिस प्रकार चीटी गुड़ में चिपकी रहती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आधार यानी आधार के लिए ये लिखा गया है। आवन यानी आगमन। व्यथा यानी व्यथा, बिरहनी वियोग में जीने वाली, जो किसी की जुदाई में जी रही हो, तड़प के जो जी रही हो, वियोगनी इसका सही अर्थ होता है, लेकिन ये ब्रज भाषा में लिखा गया है इसीलिए ये हो जाएगा बिरहिनी। बिरह दही, अब है बिरह दही यानी विरह की आग में जल रही हैं। हुती यानी थी। गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, कहते हैं ना गुहार लगाना, हिंदी में शब्द होता है गुहार लगाना, और उसी को ब्रज भाषा में करके सूरदास जी ने गुहारी लिखा है, यानी रक्षा के लिए पुकारना। जितहीं ते यानी जहां से। उत यानी उधर या वहां। धार यानी योग की प्रबल धारा। धीर यानी धैर्य या फिर धीरज। मर्यादा, मर्यादा के लिए लिखा गया है, मर्यादा या प्रतिष्ठा, जहां पे गोपियों ने बात कही है कि प्रेम की मर्यादा यह होती है, अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आप भी उसे बदले में प्रेम दें। न लही यानी नहीं रही या नहीं रखी, प्रेम की मर्यादा नहीं रही या प्रेम की मर्यादा कृष्ण ने नहीं रखी, ये कहा। हारिल, तो हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है, इसीलिए ये मुहावरा बना है। मैंने आपको बताया था, पद समझाते हो कि हारिल की लकड़ी एक मुहावरा है, ऐसा लगता है हारिल को कि वो लकड़ी जो है वो उसका सहारा है, तो ऐसे ही अगर हम इस्तेमाल करते हैं मुहावरा हारिल की लकड़ी, यानी जब हम किसी चीज को अपना सहारा बता रहे होते हैं। तो गोपियों ने ये जो शब्द है हारिल की लकड़ी, ये कहाँ इस्तेमाल किया था? हाँ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं फिर से याद दिला देती हूँ। गोपियों ने कहा था कि हरी जो है वो हमारे लिए हारिल, हमारे हरी तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, यानी जो हमारे कृष्ण है वो हमारे लिए उसी सहारे की तरह है जैसे हारिल के लिए उसकी लकड़ी होती है, हम कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। नंद नंदन उर्पकरी यानी नंद के नंदन, यानी नंद के जो बेटे हैं कृष्ण को भी हमने अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। नंद के नंदन यानी नंद के बेटे, नंद के लाल श्री कृष्ण कन्हैया को हमने अपने दिल में बसा लिया है, कसकर पकड़ लिया है। जकरी यानी रटती रहती हैं कृष्ण का नाम। सु यानी वह। व्याधि यानी रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होते ना, क्या व्याधि लग गई है, यानी क्या बीमारी, क्या रोग लग गया है, क्या दुख पहुंचाने वाली चीज पीछे पड़ गई है। करी यानी भोगा, कोई चीज भोगना, महसूस करना। तिनही, तिनही मतलब उनको, मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं होता, जिनका मन चक्री के समान होता है, जिनका मन चंचल होता है। क्योंकि चक्री कैसे होती है, आपने देखी है ना, चक्री गोल गोल घूमती रहती है, एक जगह नहीं ठहरती। वैसे ही जिनका मन चक्री के समान है, इधर उधर भटकता रहता है, स्थिर नहीं रहता, चंचल होता है, उनका मन चक्री के समान कहा है गोपियों ने कि जिनका मन स्थिर नहीं हो उनको जाके उपदेश सुनाओ। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो एक ही जगह पे लगा हुआ है, कहाँ पे, श्री कृष्ण में। मधुकर, देखिए मधुकर मैंने आपको बताया भौरे को कहते हैं यानी भ्रमर को, ये उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। यानी क्योंकि गोपियां सीधे उद्धव से बात नहीं कर रही हैं, वो समझती हैं कि उद्धव से तो वो बात करना ही नहीं चाहती, उनके द्वारा संदेश नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो भौरे से अपनी बात कह रही हैं, बातें उद्धव के लिए कह भौरे से रही हैं, तो भौरे को जो संबोधन करके वो मधुकर कहती हैं, है ना। मधुकर यानी भौरा या भ्रमर, वो काले रंग का जो होता है उड़ता है। होते यानी थे, पठाए यानी भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, पर यानी दूसरे और हित यानी भलाई या कल्याण, ठीक है। डोलत धाय घूमते फिरते थे, श्री कृष्ण के लिए लिखा है। फेर यानी फिर से, पाहिए यानी पा लेंगी, अनीति यानी अन्याय यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपके जो कठिन शब्द बीच में आए थे वो भी मैंने समझा दिए, अब आप दोबारा से चाहेंगे पदों को पढ़ेंगे तो खुद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने चारों पदों के अर्थ बता दिए हैं, लेकिन ये शब्दार्थ देखने के बाद अगर आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए घर जाके आप ये सूरदास के चारों पदों को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। अब दिया है यह भी जाने, हारिल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए क्या लिखा है, यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे हरियल या हरित, संस्कृत में हरित कहते हैं, और कॉमन ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। तो ये एक पक्षी है जो कबूतर की तरह लगता है, इसकी टांगे पीले रंग की होती हैं लेकिन शरीर हरे रंग का होता है, ठीक है। इसे हिंदी में हारिल या हरियल कहते हैं क्योंकि यह हरे रंग का होता है, संस्कृत में इसे हारित कहते हैं, और अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कॉमन ग्रीन पिजन, ठीक है। ये इसके कुछ नाम हैं और यहाँ रंग बता दिया गया है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ घने पेड़ है यानी सघन जंगल जैसे इलाके हैं, वहां पे ये पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है। देखिए वही बात आई जो मैंने आपको बताया था, हारिल की लकड़ी एक मुहावरे के तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसका अर्थ होता है हारिल की लकड़ी उसके लिए सहारा होती है, तो जो चीज हमारे लिए सहारा है उसे हम हारिल की लकड़ी कह देते हैं। तो यहाँ पे आपके शब्दार्थ भी पूरे हो गए और आपके चारों पद भी पूरे हो गए। अब बचते हैं इसके प्रश्नोत्तर, पेज नंबर 7 पर। तो इसके जो ये प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले ऑडियो में करेंगे, ठीक है। एक बार पद और दोबारा पढ़ देती हूँ मैं आपको, चारों के चारों पद। पहला है, उद्धव तुमहो अति बड़भागी, अपरस रहत सनह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे नदागी, ज्यो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब ला हम बोरी, गुरु चाटी जो पागी, है ना। यानी उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहते हो भी उनके प्रेम को नहीं पा पा रहे हो, जैसे कि कमल का पत्ता जल में रहते हो भी भीगता नहीं है, उसके देह पे दाग नहीं पड़ते, वैसे ही तुम्हारे पे भी कृष्ण का प्रेम नहीं आ रहा है। जैसे तेल जो है उसकी गगरी पानी में डाल के भी उस पे तेल पानी की बूंद नहीं आ पाती, वैसे ही तुम पे कृष्ण के प्यार की एक भी बूंद, एक भी छींटा नहीं आ रहा है। तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया तो तुम प्रेम का अर्थ नहीं जान सकते। हम तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं, हम तो भोली भाली हैं, इसलिए हम तो कृष्ण से वैसे ही जुड़ी रहेंगी जैसे गुड़ जो है वो चींटी जो है वो गुड़ से चिपकी रहती है, ठीक है। दूसरा, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परित कई अवधि आधार, आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितैते उतैत धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा ना लही। क्या कह रही है कि हम तो हमेशा से तड़पते रहते थे उनके उनकी विदाई में, दुखी होते रहते थे, लेकिन हम बस इसी आस में, इस उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन कृष्ण वापस लौट आएंगे, और इसी आशा के, उम्मीद के चलते हमने तन मन हर तरह का कष्ट सहा। लेकिन अब ये जो योग के संदेश, ये ज्ञान के संदेश वो भिजवा रहे हैं, इससे तो हम विरह की अग्नि में, इस जुदाई की अग्नि में और जलने लगे हैं। लोग अब गुहार करते हैं अपने रक्षक से, लेकिन हमारे रक्षक ने जब हमें इतना कष्ट दे दिया तो हम किससे मदद मांगे, है ना। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं पाली है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तीसरा, हमारे हरि हारिल की लकरी, मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कह कह ककरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करो ककरी, सुतो ब्याधि हम ले आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिनही तय सोपो, जिनके मन चकरी। क्या कह रही हैं, हमारे जो हरि, हमारे कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हमने मन क्रम वचन हर तरीके से नंद के नंदन, यानी नंद के जो लाल हैं कृष्ण कन्हैया, उन्हीं को अपना माना है, कसके पकड़ रखा है, सोते जागते रात दिन स्वप्न में हम काना काना का नाम ही जपते हैं। हमें तो प्रेम का रोग पहले ही लग चुका है, लेकिन अब तुम ये ज्ञान का नया रोग, क्या व्याधि हमें, व्याधि यानी बीमारी क्या लगाने आयो, हमने कभी नहीं सुनी है, और अब हम इसको नहीं अपनाएंगे, ये तुम उन्हीं को ले जाके सौंप दो जिनका मन स्थिर नहीं होता, हमारा मन तो कृष्ण में स्थिर है। चौथा पद देखिए, हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म ये सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब वो क्या कह रही हैं, कृष्ण जी बड़े राजनीति पढ़ाए हैं, बड़ा ज्ञान जाना है, इसलिए ऐसे ऐसे संदेश भिजवा रहे हैं, है ना। पहले ही एक तो इतने चतुर चालाक थे, अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, इसीलिए हमारे लिए योग के संदेश, ये ज्ञान के उपदेश भिजवा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं, कृष्ण जब यहाँ से गए थे तो हमारा मन भी चुरा के ले गए थे, अब हमारा मन वो हमें वापस कर दे। मथुरा गए थे दूसरों की अनीति को खत्म करने, दूसरों के अन्याय को, अत्याचार को खत्म करने, पर अब तो वो स्वयं ही हम पे अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन राजा का धर्म है कि उसे कभी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, उस पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके दुख दर्द को दूर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चारों पद पूरे होते हैं। अब प्रश्न अभ्यास जो है वो हम अगले ऑडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।